हमें हर चुनाव में हिंसा की श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है। ये 1970 के दशक में हुआ था। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन पश्चिमी यूपी के एक गांव में, जहां दो बड़े परिवार चुनावी लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जो व्यक्ति हार गया वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने प्रतिद्वंदी के चुनाव को पलटवाने को लेकर असमंजस में था। वह अनुकूल फैसला पाने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार था। उनके पास आए कई वकीलों ने उन्हें बताया कि उनका मामला कमजोर है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि दो बिंदु है जिन पर वह अनुकूल फैसले के लिए मुकदमा लड़ सकता है। उस व्यक्ति ने मामले को उठाने के लिए दो प्रसिद्ध वकीलों को चुना। आखिरकार यह एक मूंछ का सवाल था। मामला चलता रहा। इस बीच उनका परिवार और उनके प्रतिद्वंदी हिंसक संघर्ष में लगे रहे। लगभग 4 साल बाद फैसला सुनाया गया और उनके पक्ष में नहीं था। तब से मैं एक सवाल से जूझ रही हूँ। ब्लॉक प्रमुख जैसे पद के चुनाव के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया गया और खून क्यों बहाया गया? पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा ने इस पुरानी बहस को फिर से जन्म दे दिया है। कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र अमृतकाल से गुजर रहा है, लेकिन हम कब अमृत प्राप्त कर पाएंगे? पश्चिम बंगाल हिंसा से अछूता नहीं है। यहाँ हर चुनाव खून खराबा होता है। हर बार हमने राज्य प्रायोजित हिंसा का आरोप सुना है। पिछले 4 दशकों में चुनाव आयोग ने चुनाव दर चुनाव अपनी व्यवस्था में सुधार किया। इस बार पश्चिम बंगाल में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बल भी तैनात थे। इसके बावजूद करीब 40 लोग मारे गए। 2019 के चुनावी वर्ष के दौरान देश भर में कुल 72 लोग मारे गए। अकेले पश्चिम बंगाल में इतनी मौतें होना भयावह है। इस मामले में पड़ोसी उत्तर पूर्व और झारखंड भी कम कुख्यात नहीं है। सवाल यह है कि इस नरसंहार का दोषी कौन है? सभी पीड़ित पुरुष थे और उनमें से अधिकांश अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले थे।